संतप्त मन से शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्षाधिकार का मंगलाचरण अपन ने किया था, अब गाथाएं शुरू करना है। पढ़ो गाथाएं। जय नाम को भी पुरुष हो, तरीका था। जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, तो कहानी जो सुनाते थे ना, एक राजा था, और नाम माम कुछ नहीं, बस एक राजा था है? उसके एक रानी थी, दो एक पुत्र और पुत्री थी बस। फिर बहुत दिनों बाद राजाओं के नाम रखे जाने लग गए। पुराणों में तो नाम थे ही, लेकिन काल्पनिक जो कहानियां थी उनमें भी नाम रखने लग गए। फला नाम का राजा था, और पशु पक्षियों की कहानियां बहुत चलती थी। तो बस एक जंगल में एक शेर रहता था, और इस तरह से उस कहानी चलती थी। बाद में फिर शेरों के भी नाम रख दिए गए, और फिर वो नाम ऐसे सार्थक होते थे। क्रूर दृष्टि वाला नामक शेर रहता था, ऐसे ही उसने एक फलाना हिरण रहता था, तो उसका नाम भी रख दिया। इसे चलता था। तो उन्हें जय नाम को भी पुरुषो, जैसे किसी नाम का कोई पुरुष। बंधन अम्मी चिरकाल परिबद्धो, बहुत समय से बंधन में पड़ा हो। देखो, तिब्बम मंद स्वभावम कालम च बयान दे तस्से, वो उसके तीव्र मंद स्वभाव को, और ये कितने काल तक रहेगा ऐसा जानता हो। माने देखो, कितने काल तक रहेगा इसमें स्थिति बंद है, और तीव्र और मंद स्वभाव में अनुभाग बंद है, और प्रकृति और प्रदेश बंद तो कर्मों में ही आ गया ना। तो इस तरह से इन्होंने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों बंधन की बात करी। लेकिन अभी तो जय नाम को भी पुरुषों की बात है, माने वो सांकड़ों से, रस्सियों से बंधा है, और रस्सियां इतनी मजबूत हैं कि बरसों तक नहीं गले, नहीं सड़े, नहीं छूटे, नहीं। तो कहते हैं कि यदि वो व्यक्ति उनको जानता रहे कि ये रस्सी बहुत मजबूत है, ये 10 बरस में टूटेगी और टूटे भी नहीं, इस तरह से उसके काल को भी जाने। और बहुत मजबूत है, ऐसी रस्सियां बहुत मजबूत हुआ करती हैं, तो इस तरह से उसके तीव्र और मंद स्वभाव को भी जाने, तो वो जानता रहे तो कब मुक्त हो जाएगा। कहते हैं जब तक वो उस रस्सी को छोड़ेगा नहीं, काटेगा नहीं, तब तक वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। माने अकेले जानने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति कर्मों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इन बंधों को जाने तो जानने मात्र से वो छूटेगा नहीं। जब छोड़ने का प्रयत्न करेगा तो छूटेगा। माने इस तरह से यहां ज्ञान को निरर्थक सिद्ध किया जा रहा है, अकेले ज्ञान को। जानना तो इसलिए जरूरी है कि ये बंधन को तोड़ने लायक नहीं जाना जाएगा तो अभी वो नहीं तोड़ सकेगा, तोड़ेगा ही नहीं। और उन बंधनों को किस विधि से तोड़ा जाए ये नहीं जानेगा तो नहीं तोड़ सकेगा। जैसे कि कहते ना, सोने की बेड़ी का उदाहरण दिया ना पुण्य पाप अधिकार में, तो सोने की बेड़ी को वो गहना मानता है, वो थोड़ी मानता है मैं बंधन में बंधा हूं, वो तो मेरा एक गहना है, मेरा सौंदर्य है, तो वो उससे क्यों छूटना चाहेगा। जब छूटना ही नहीं चाहेगा तो छूटने का सवाल ही नहीं है। और फिर छूटना चाहे तो ये जानना जरूरी है कि ये बेड़ी है, ये बंधन है, ये मेरा गहना नहीं है, ये मेरा श्रृंगार नहीं है। और एक तो ये जाने, फिर छूटने की विधि जाने, और फिर छूटने का प्रयत्न करे। माने छूटने का ज्ञान हो, छूटने की इच्छा हो, छूटने की विधि जाने और छूटने का प्रयत्न करे। इतनी चीजें हो, माने श्रद्धा, ज्ञान और चार, तो तीनों हो गए ना, तो काम बनेगा। अब इसमें हमने दो पक्ष खड़े किए, एक ज्ञान पक्ष और एक क्रिया पक्ष, आता ना ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्षा। तो वो यहां ये कह रहे हैं कि अकेले जानने से कुछ नहीं होगा, जान कर और उससे छूटने का प्रयत्न करे तो छूटेगा। और जानने में दो बातें हैं, एक तो मुझे इनसे छूटना है क्योंकि ये बंधन है, और दूसरे वो छूटने की विधि जाने। एक तो ये जाने कि इनसे मुझे छूटना चाहिए, ये बंधन है, ये मेरे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। होता क्या है कि उस बंधन को ही वो अच्छी चीज मान लेता है। जैसे कोई यहां नौकरी करता है ना सेठ के यहां, अब सेठ मान लीजिए उसे 1 लाख रुपए महीना देता है, लेकिन वो बहुत होशियार अच्छा आदमी है, वो बिजनेस के काम को बहुत अच्छी तरह संभालता है ईमानदारी पूर्वक। अब वो चाहता है कि भाई मैं ही सारा काम करता हूं और मैं खुद बिजनेस कर सकता हूं। रही पूंजी का सवाल, बैंक से मिल जाती है, बैंक से मंजूर कराने का काम भी पूरा मैं ही करता हूं, वो सारी विधि और प्रक्रिया भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, और बैंक वालों से परिचय भी मेरा है, सेठ जी दोनों जानते भी नहीं, तो मैं ये काम बहुत अच्छी तरह से कर लूंगा और अपना खुद का बिजनेस स्थापित करके मैं सेठ बन जाऊंगा। तो वो छूटना चाहता है, इस्तीफा दे देता है। यानी पहले तो उसने ये नक्की किया ना कि मुझे छूटना है। यदि वो गए इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी लाख रुपए महीने की नौकरी, थोड़े पागल हो गया है क्या? यदि वो उस नौकरी को अपना गौरव माने तो छूटने का कहां सवाल है? बोलो, जब वो ये समझे कि मैं तो बंधन में पड़ा हूं और मुझे इसे छोड़ना है, एक तो ये जाने के मुझे इस बंधन से छूटना है और फिर छूटने की विधि जाने। अब वो छूटने का प्रयत्न करे और उसने सेठ जी को इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा भाई क्यों क्यों क्या बात है, क्या बात है कि कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, कम तनख्वाह है, ठीक है, कितनी चाहिए बोलो, कितनी चाहिए? इन्हीं नहीं साहब चाहिए नहीं, मुझे काम ही नहीं करना है, तुम्हें 2 लाख रुपए महीना देंगे, ठीक है, जाओ चुपचाप बैठो। तो वो कहता है ठीक है, इतनी बढ़िया नौकरी, धंधे में यदि सफल नहीं हुआ तो फिर इतनी बढ़िया नौकरी नहीं मिलेगी कभी। तो वो कभी उसे छोड़ नहीं सकेगा, समझे ना, क्योंकि अभी तो उसे मतलब कम मिलते थे इस हिसाब से छोड़ रहा है। अभी ऐसे पुण्य के उदय वाले जीव का छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो छूटने का भाव करे तो छूटने के भाव से और अधिक पुण्य बंधे और उसे और अधिक अनुकूलताएं मिले तो वो और अधिक मजबूती से उस बंधनों में बंधता चला जाता है। तो कहते पहले तो छूटना है, बंधन अच्छी चीज नहीं है, उसमें कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसका सवाल नहीं है। तो पहले छूटने का संकल्प करे, माने छूटने की इच्छा हो, फिर छूटने की विधि जाने और फिर छूटने का प्रयत्न करे। अभी तुम रोजाना पढ़ रहे थे ना ईश्वर ईश्वर बात का, ईश्वर जगत का करता है तो उसे 3 चीजें तो चाहिए ही, उसे ज्ञान चाहिए, इच्छा चाहिए और प्रयत्न चाहिए। 3 के बिना तो कोई काम इस जगत में होता नहीं है। एक पहले तो इच्छा हो कि मैं ये काम करूं, फिर एक काम करने का ज्ञान हो और ज्ञान हो और फिर बाद में प्रयत्न करे। तो जो वो ईश्वर बात पे लगा रहे थे वही बात यहां बता रहे हैं। वो 3 वही सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। यदि ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं, ज्ञान ज्ञानाद मुक्ति, ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होगी। हमें मुक्ति के लिए छूटने का उपाय जानकर छूटने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हम छूटेंगे। इस तरह से यहां ज्ञान वाले पक्ष की निरर्थकता बता रहे हैं उस क्रिया के बिना। ज्ञान जरूरी है लेकिन वो यदि क्रिया में नहीं, क्रिया माने छूटने की क्रिया नहीं करे तो वो छूटने में सफल नहीं होगा। ये तो कॉमन बात होगी, लेकिन इसमें हम देखते हैं जो टीका है और उसके सब माध्यम से उन्होंने इसका अर्थ ये निकाला कि करुणान योग के शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म के बंधनों का जिक्र है। अब उसको हम बहुत गहराई से अध्ययन करें, कर्म की मूल 8 प्रकृतियां होती हैं, उत्तर प्रकृतियां 148 हैं और फिर वो कर्म के असंख्यात प्रदेश परमाणु होते हैं कारमान वगैरह के, जिन्हें हम प्रदेश कहते हैं, हैं तो वे परमाणु, पर उनको शास्त्र में प्रदेश संख्या नाम प्रदेश नाम है। तो वो बंधते हैं योग की चंचलता से, फिर वो उनमें प्रकृति का बंटवारा होता है, फिर उसमें स्थिति पड़ती है, फिर उसमें अनुभाग पड़ता है, ऐसा बहुत 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 डिटेल जाने। तो जानने से कर्म बंधन से तुम मुक्त नहीं होगे, इसलिए कहते हैं कर्मान योग के जानना, मेरे कोई लगा रहा है और अपने को मोक्ष मार्गी मान ले तो वो बात सही नहीं है। इनने वहां कर्मान योग संबंधी ज्ञान को मुख्यता दी। अभी ये टीका है आत्मख्याति में, देखो यद्यपि बहुत छोटी सी टीका है, तीन गाथाओं की भी तीन पंक्तियां नहीं है। आत्मबंधयो दुधा करना मोक्षा, कर्णम मोक्षा, आत्मा और बंध का अलग अलग करना उसका नाम मोक्ष है। बंध से आत्मा को छोड़ना उसका नाम मोक्ष है। बंध स्वरूप ज्ञान मात्रम तद हेतु रित्यै के, ज्ञान मात्र से बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र से हम उससे छूट जाएंगे ऐसा कोई कहता है तद असत, वह बात सही नहीं है, ठीक नहीं है। न कर्म बंधन से बंध स्वरूप ज्ञान मात्रम मोक्ष हेतु, कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो अहेतुत्व, क्योंकि वो उसका हेतु नहीं है। निगड़ादि बद्ध से बंध स्वरूप ज्ञान मात्रवत, जैसे हम बेड़ी से बंधे हों और उसको हम जाने 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 तो जानने मात्र से हम बंधन से नहीं छूटेंगे। ये तेने कर्म बंध प्रपंच रचना परिज्ञान मात्र संतुष्टा उत्थाप्यन्ते, क्या अर्थ है? इससे कर्म बंध की प्रपंच माने विस्तार के से उसकी रचना का परिज्ञान ज्ञान हो जाने पर उससे जो संतुष्ट हैं उनका खंडन किया। वास्तव में एक ज्ञान का निषेध नहीं है, उतने मात्र से जो संतुष्ट हो गए उनकी उस मान्यता का निषेध किया कि कर्म बंध की क्रिया से जो बहुत गहराई से जुड़े हैं ऐसे जीवों को उसकी मान्यता का उन्होंने निराकरण किया। यद्यपि मूल गाथाओं में ही ये बात है, भाग्य की बात है कि वहां पर कुंदकुंदाचार्य ने जब ये ग्रंथ लिखा उसके ठीक पहले 10-20-25 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले सठखंडागम लिखा गया था और उसमें सारे बंध का स्वरूप बहुत विस्तार से लिखा गया था। उसके बाद कुंदकुंदा बहुत से लोग उसी को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो उस वक्त कुंदकुंदाचार्य को ये लिखना पड़ा कि तुम इसको ही पढ़ने में लगे रहते हो और इससे छूटने का कोई रास्ता नहीं। कुंदकुंदाचार्य थे, सैकड़ों होंगे सरखंड आगम के अध्ययन में मस्त रहते होंगे और वो उससे बहुत संतुष्ट भी रहते होंगे कि हम तो विशेषज्ञ दर्शन के हैं और बंध की प्रक्रिया के विशेषज्ञ हैं। और यहां फिर वीरसेन स्वामी धवला महाधवल जय धवल ये टीकाएं लिखी उसी सरखंडागम के आधार पर। उसके तत्काल बाद हमने चंद्राचार्य हुए। वीरसेन स्वामी का भी प्रभाव बहुत ज्यादा था, उस वक्त भी करुणान योग का ही बोलबाला रहा होगा बहुत ज्यादा। तो उस वक्त उसकी टीका लिखने में तो उनको भी ये कहने का मौका मिला कुंदकुंद की उन गाथाओं के आधार पर स्वरूप देखो क्या संयोग यदि करुणान योग के दुष्टाचारी जब जब हुए योग के अध्यात्म के दृढ़ता से उसका निषेध किया। ये कहता हूं इसमें टीका में तो ऐसा लिखा है कि गई है बुद्धि जिनकी, देखो क्या लिखा, पेज नंबर निकालो 416 संस्कृत में दूसरी पंक्ति, ये तेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांध बुद्धयो बोध्यन्ते। क्या इसका अर्थ है? इससे कर्म बंध विषयक चिंतमन रूप विशुद्ध जो धर्म ध्यान है, कौन सा? चार प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं ना, कौन कौन? नाम मालूम? आज्ञा विचय, उपाय विचय, उपविपाक विचय और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय तो चरणानुयोग है, भगवान की क्या आज्ञा है। जैसे आलू में अनंत जीव है तो नहीं खाना चाहिए, यानी जो चीजें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हैं कि यहां अनंत जीवों का घात होता है, तो उनकी आज्ञा से उनने हमें उनका खाने का निषेध किया, तो उसको जानकर और उसको जीवन में हम अपनाएं, तो एक तरह से उसके बारे में चिंतन करें, तो वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हो गया है ना। अब उपाय विचय तत्वा सूत्र है, वो तो रत्न सबका चार हो गया, अनंगार धर्मामृत हो गया, सागर धर्मामृत हो गया, और फिर तत्वा सूत्र हो गया संबंध ज्ञान का रत्नी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का उपाय क्या है? सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन हो गया, फिर विपाक विचय कोई कर्मों का उदय कैसे होता है, कब बंधन होता है, क्या होता है, तो ये करुणानुयोग हो गया। अपने संस्थान विचय लोक का आकार, तीन लोक की रचना, जम्बू दीप, ढाई दीप, तेरा दीप, तो ये सब जाके फिर ये भी करुणानुयोग में आता है। तो एक तरह से अध्यात्म शास्त्र वाले ये कह रहे हैं कि आचार शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र और कर्म शास्त्र और ये भूगोल, इनका अध्ययन करने वाले ये धर्म ध्यान के भेद है ना। तो कहते धर्म ध्यान से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, माने वो कहते हैं भाई यही तो धर्म ध्यान है ना, तो हमें ये अध्ययन में तो लग रहा है 24 घंटा, तो हम भी तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, यानी हमें नग्न निगम्बर होने की क्या जरूरत है, हम आत्मा के अनुभव में शुद्धोपयोग में जाने की क्या जरूरत है, हम इस शुभोपयोग से ही हमारे कर्म कट जाएंगे, ऐसी मान्यता जिनकी हो गई है उनको लिख रहे हैं कि अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी। माने इसमें जो करुणानुयोग वगैरह के स्वाध्याय से अंधी हो गई है बुद्धि जिनकी, ऐसा बोलते हैं, तो उनकी उत्थापना करते हैं। और दूसरी देखिए, इन गाथाओं को लेकर जो क्रियाकांड में धर्म मानते हैं वो लोग स्वाध्याय करने वालों पे अटैक करते हैं। क्या भाई इनको तो क्या है? कर्म फिलोसफी में अटक रहे हैं, अभी आत्मा समय सार पढ़ने में लगे हैं, अभी कोमर सार पढ़ने में लग रहे हैं, और अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, एक तरह से समझ लो तो सीधा आक्रमण अपन लोगों पर ही है। चारों नियोग आपको पढ़ाए जाते हैं ना, और धर्म ध्यान का जो वर्णन शास्त्रों में है, और निश्चय से तो हम कहेंगे कि जब तक ये विकल्पात्मक चिंतमन है तब तक व्यवहार धर्म ध्यान है, और जब ये विकल्प हटके और अकेला ज्ञानात्मक चिंतमन रह जाए तो निश्चय धर्म ध्यान हो जाएगा, है ना। तो वो जो वो कहते इसमें लग रहे हैं तो उनको कहते हैं कि जे अंधे हैं, और उदाहरण दिया कि बंधन की प्रक्रिया को जानने से कोई भी जीव बंधन से मुक्त नहीं होता, ख्याल में ना। ऐसे ही कर्म बंध की प्रक्रिया के विशेषज्ञ होने से कोई जीव उन कर्मों के बंधन से छूटेगा नहीं। बस अब ये तो हो जाएगा एकांत, और इसमें इतना लगा दो कि बस अकेले इसी में लगा रहे और संतुष्ट हो जाए तो साधवाद हो जाएगा। मतलब इसको जानना नहीं पड़ेगा, ये तो कही नहीं रहे, जानना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसको छूटना पड़ेगा। और वो ये कहना चाहते हैं कि तुझे शुद्धोपयोग में जाना पड़ेगा, ये सब शुभोपयोग रूप धर्म ध्यान है, और तुझे इससे हटकर शुद्धोपयोग में जाना पड़ेगा, तब एक कर्म बंधन से तू छूटेगा। वो तो ये कहना चाहते हैं तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो क्रियाकांड में उलझे हैं और अपने को बहुत धर्मात्मा मानते हैं, वे लोग इन स्वाध्याय करने वाले और इन विशेषज्ञों में जो लगे हैं अपने द्वादशांग वाणी के उसमें, उनको एक उनके विरुद्ध इसका उपयोग करते हैं। कुंद कुंद ने अमृत ने क्लियर शब्दों में लिखा कि अकेले एक तुम्हारे कर्म बंधन को जानते रहने से किसी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और तो फिर वो क्या कहते हैं, तुमको एक करना पड़ेगा जो हम कहें। बहुत प्रैक्टिकल है, जितना भी हमारा मुनिराजों से संपर्क आता है तो सब एक बात तो जरूर कहते हैं, यानी आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, और ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आपका स्वाध्याय बढ़िया है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक दिन तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा और आपको एक कदम है ना हमारे रास्ते पर आना पड़ेगा। माने तुम दूसरे गलत रास्ते पर हो और हम सही रास्ते पर हैं, और तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा, हमसे दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उनसे ये कहते हैं, अब क्या कहे, अपन तो सद्भावना पूर्वक गए हैं और सद्भावना पूर्वक ही वापस आना चाहते हैं, इसलिए उनसे कुछ ज्यादा कहने का तो प्रसंग बनता नहीं है। फिर भी ये कहते हैं कि भाई ये जो आप बात कह रहे हो इससे हम कहां असहमत हैं, क्यों हम ऐसा थोड़ी मानते हैं कि हम ऐसे पढ़ते 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 एकदम केवल ज्ञानी हो जाएंगे, हैं? पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञानी केवली तो होते ही नहीं है, श्रुत केवली भी नहीं होने वाले हैं। मोक्ष में चले जाएंगे ऐसा हम कब मानते हैं, हम भी वो ही मानते हैं, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि सचमुच हम मानते हैं, वो समझते हैं बस हम तो कह रहे हैं, ये मानते हो तो आते क्यों नहीं हो जाओ बस नहीं हमें। एक महाराज ने तो मेरे से कहा था कि काय को सारी दुनिया में भागते हो, तुम आ जाओ हमारे पास नैन दिगंबर दीक्षा ले लो, सारी दुनिया तुम्हारे पास दौड़ी चली जाएगी। अब सवाल हम दुनिया के पास जाएं कि दुनिया हमारे पास आए, सवाल इसका है क्या? ना तो दुनिया के पास जाने से कोई प्रयोजन है, ना दुनिया हमारे पास आए इसका कोई प्रयोजन है। अकेले में नहीं, भरी सभा में कहा था, कम से कम 1000 आदमी से ज्यादा लोग होंगे उनकी उपस्थिति में, ऐसा कहा था। अरे भाई हमें तो इन सबसे छूट के मुक्ति में जाना है, मुक्त होना है। तो ये वास्तव में ये किसी के विरुद्ध नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है कि वो ये बताना चाहते हैं कि मुक्ति के मोक्ष के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप के बंध के स्वरूप को, बंध से भिन्न भगवान आत्मा है ये जानना है, और जानकर इससे विरक्त होकर और इससे होने की विधि को अपनाना है, और वो है शुद्धोपयोग। वे तो इस स्वाध्याय रूप धर्म ध्यान का निषेध करके और ध्यान रूप जो है ना, समझ लो क्या, निश्चय धर्म ध्यान की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान कह सकते हैं। माने अपने 12 तपों में एक स्वाध्याय तप है ना, दसवां और बारहवां तप है ध्यान, तो ये तो गारंटी से है ना कि स्वाध्याय नाम के तप से ध्यान नाम का तप उत्कृष्ट है, इसमें कोई शंका है? तो एक दो भी मुनिराज लोग ये बात कहते हैं कि ये गाथाएं लेकर हमारे आपके विरुद्ध इन गाथाओं का उपयोग करते हैं। दूसरे हमारे बगल में ही ऐसे वे लोग खैर खड़े हो गए हैं, खैर स्वाध्याय बहुत हो गया क्या, जैसे मैं द्वार दशांग के पासी हो गए हों बहुत सुन लिए शास्त्र, अब तो आओ तुम ध्यान करो, पर ऐसा कहकर इस स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बंद करके और बैठ करके और बस चार बस ऐसा आंखें बंद करके बैठने लग गए और अपने को ध्यान वाला मानने लग गए ना, उसके आगे बड़े हैं तो पातंजलि को पढ़ने लग गए, वो उसको पढ़ना नहीं मानते, वो तो ध्यान ही का अंग है पतंजलि योग, समझे ना मेरे को तो एक दफे अभी कई महीना दो महीना के भीतर ही वो लाला करके रजनीश की किताबें उनमें निशान लगा लगा करके मुझे दी कि आप ये पढ़ो यहीं यहीं जयपुर में किसी ने, अब मैं किताब का नाम ही नहीं बताना चाहता हूं नाम भी ऐसे हैं कि जो अपन अपनी जबान पर नहीं ला सकते मेरे कहने का अर्थ है कि वो ये इन गाथाओं का उपयोग करने लग गए करुणानी योग के विरोधी, क्योंकि यहां कर्म बंधन की प्रक्रिया की चर्चा है ना, इसलिए वे करुणानियों के विरुद्ध इन गाथाओं का उपयोग करने लग गए। ये तो मैंने बोला ना, हमने कहा ना कि वो धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि, तो उदाहरण के लिए उन्होंने करुणानियों कह दिया कर्म बंधन की, क्योंकि पिछला अध्याय बंध अधिकार था ना, इसलिए उन्होंने बंधन की बात कर दी कि बंधन के ज्ञान मात्र से बंधन से नहीं छूटोगे, है ना, बंधन के ज्ञान तो लेकिन मैंने बोला ना कि वो धर्म ध्यान से अंधी बुद्धि कही ना, तो धर्म ध्यान तो अब भी है ना, वो पहला कौन सा बताया था, आज्ञा विचय फिर उपाय विचय, वो भी धर्म ध्यान है, फिर तो शुभोपयोग के विरुद्ध शुद्धोपयोग की बात करना चाहते हैं, ना ये बाहर के ज्ञान से रहित पूरे नग्न दिगंबर दशा हो जाना और क्रिया किसी क्रिया विशेष को अपनाने की बात करते हैं, फिर तो विशुद्ध बात करते हैं। देखो आपने खाती तो अपन ने पढ़ ली ना, इधर हिंदी पढ़ लेते हैं उसकी, आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना मोक्ष है, कोई कहता है कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण है, किंतु यह बात ठीक नहीं है, कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है, इस कथन से उनका खंडन हो गया जो कर्म बंध के विस्तार से के ज्ञान से ही संतुष्ट हैं। करुणानियोग की तरफ इशारा तो है, और वो भी खासकर कौन से करुणानियोग, जो जिसमें कर्म बंदगी प्रक्रिया का है, समझ लो कर्म कांड, तो चारों प्रकार का जो प्रकृति प्रकेश प्रदेश स्थिति और अनुभाग ये बंद है, फिर किस कर्म की कौन सी कितनी स्थिति है, उत्कृष्ट कितनी है, जघन्य कितनी है, वो सारा वर्णन है। फिर उसके अनुभाग के प्रक्रिया का भी बहुत वर्णन है। तो उसके ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो गए हैं। तो वास्तव में निषेध तो काय का है, वो ज्ञान मात्र से भी संतुष्ट हुए, उस संतुष्टि का, वो ये उसके ज्ञान का निषेध करने लग गया इसके बहाने। भाई तुमने जान लिया, अब अपने इधर जाओ। देखो एक बात बहुत मरम की समझ लेना, अध्ययन दो प्रकार का होता है। जो गवर्नमेंट कोर्स बनाती है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक ऑप्शनल और एक कंपलसरी। माने जो किताबें रखती है ना आपके, कि ये तो आपको पढ़ना अनिवार्य है, ये त्रिभाषा फार्मूला है, तो आपको तीन भाषाएं पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तो अपने प्रांत की भाषा, प्रांतीय भाषा, एक देश की भाषा और एक विश्व की भाषा। क्योंकि आपको अपने प्रांत में रहना है, और जो जो किसान हैं और सब जो लोग हैं उनसे आपको संपर्क में रहना है, तो उस प्रांत की भाषा आपको जानना चाहिए। अब आपको देश में रहना है तो बाकी प्रांतों से आप बिल्कुल कट जाए हुए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है आता ना, तो एक हिंदी आपको जानना जरूरी है। फिर ये कहेंगे तो मेरी यहां से बाहर जाओगे तो हिंदी से भी काम नहीं चलेगा, भले ही अंग्रेजी बहुत कम लोगों की भाषा हो, लेकिन विश्व में कहीं भी चले जाओगे तो उससे काम कम से कम ये तो हो जाएगा ना, कि रेलवे का टिकट मंगाओगे, ट्रेन का टिकट मंगाओगे, कहीं जाओगे तो बात कर लोगे। तो उन्होंने त्रिभाषा फार्मूला बना दिया और उसे कंपलसरी कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब आपको जिस विषय के विशेषज्ञ बनना हो वो ऑप्शनल, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, माने आप कोई एक चीज पढ़ लो बस, वो ऑप्शनल। 10 विषय बता देंगे, उनमें से किसी एक विषय को आप पढ़ो, यानी विशेषज्ञता एक विषय में और सामान्य ज्ञान सबका। 10वीं क्लास तक जो कोर्स बनाया जाता है उसमें मुख्यतः कंपलसरी सब्जेक्ट की रहती है। यदि आपने कहीं नौकरी नहीं करी, दुकानदारी नहीं करी, धंधा नहीं किया, बाप दादों का इतना पैसा आपके पास है और ज्यादा कुछ करने का आपके मन में तमन्ना नहीं है, और उसे बैठ के आराम से खा सकते हो, इतना ब्याज और क्या किराया आए कि आप पूरा खर्च भी नहीं कर सको, ऐसे लाखों लोग अभी हिंदुस्तान में हैं, है ना? लेकिन उन्हें भी हिंदुस्तान में जिंदा तो रहना है ना, यहां के वहां जाना, शिखर जी की यात्रा पे तो जाना पड़ेगा ना, तो उनको थोड़ा सा भूगोल का ज्ञान कि हिंदुस्तान में शिखर जी पूरब की तरफ है, सोनगढ़ पश्चिम की तरफ है, गोमटेश्वर बाहुबली दक्षिण में है, तो ऐसा मोटा मोटा ज्ञान तो होना चाहिए ना, भूगोल का थोड़ा, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा, एक भाषा का जो जाके अपन हर जगह बात कर सकें, तो इतना थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान ये 10वीं क्लास तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट कहलाते हैं, कि आपको भारत का नागरिक होने के नाते भारत में जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उतना ज्ञान आपको हो जाए। तो इसको आपको मालूम क्या बोलते हैं, आप साक्षर हैं। इतना ज्ञान नहीं हुआ, आप मैट्रिक पास नहीं है, तो आपको साक्षर नहीं माना जाता। और अब आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप शिक्षित हैं। दो भेद हो गए, कौन कौन से, साक्षर और शिक्षित। तो शिक्षित होने के लिए सब विषयों का ज्ञान जरूरी नहीं है, विशेषज्ञता आप एक विषय में प्राप्त कर लो और आपकी जिंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, समझिए ना आप, अब देश को दोनों जरूरी है, देश को डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, और यहां तक कि लेटरिन साफ करने वाली भी चाहिए, नाई भी चाहिए, धोबी भी चाहिए। तो आप किसी भी एक विशेषज्ञ बन जाओ, बाल बनाने के विशेषज्ञ बन जाओ और सुबह से शाम तक बाल ही बाल बनाते रहो, धोबी बन जाओ, सबके कपड़े ही कपड़े धोते रहो, देश को तो चाहिए ना। लेकिन तुम इन सब विषयों के विशेषज्ञ बनो ये देश नहीं चाहता, फिर तो तुम पढ़ते ही पढ़ते रहे ना, काम कब करो। इस तरह के चुनाव के हिसाब से देश में कोर्स बनाए जाते हैं, समझ गया ना। अब अपन जैन धर्म में सोचो, अब जैन धर्म में चार अनियोग हैं, तो इसमें कुछ तो कंपलसरी सब्जेक्ट है और कुछ ऑप्शनल है। अब आपको आत्मकल्याण करना है तो सामान्य श्राप का तारीख को आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या खाना नहीं, क्या नहीं पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना। आपको आचरण संबंधी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए अपने जीवन में, तो उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा ना। फिर ये कहेंगे थोड़ी सी कर्म फिलॉसफी जाननी पड़ेगी, और ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जानकर जिंदगी में थोड़ा इतिहास भूगोल जान लो, जम्बूद्वीप कहाँ है, ये है धातकी खंड कहाँ है, क्योंकि अभी कहानियां पढ़ोगे तो उसमें ये सब नाम आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझे ना। थोड़ा भूगोल का ज्ञान हो जाए, थोड़ा हमारे 24 तीर्थंकरों की कहानियां आ जाए, तो ये हमारे इतिहास का ज्ञान हो गया, तो ये तो हो गया सब कंपल्सरी सब्जेक्ट, हो गया ना। और अब आपको कर्णानियोग का विशेषज्ञ बनना है, क्या आपको चरण एक एक का बहुत 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 बारीक ज्ञान डिटेल जानना है, तो फिर आप किसी एक को चुन सकते हैं, फिर सबके नहीं बन सकते। तो एक सब चीजें एक दफे पढ़ने की हैं, ध्यान से सुनना। और ये जो अध्यात्म है, समय सार है, ये 24 घंटा और 12 महीना पढ़ने का है। रोटी दाल रोजीना चाहिए, क्यों, और लड्डू मिठाई संडे टू संडे चलेगा, 15 दिन में एक दिन चलेगा, समझ गए ना। क्या, लेकिन रोटी दाल तो रोजीना चाहिए ना। तो यदि तुमको सच्चे मोक्ष मार्गी बनना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो आत्मा का निरूपक शास्त्र समझे ना, उसको आपको रोजीना 108 दफे दस सामायिक में कहेंगे नमो कामंत 108 दफे पढ़ो, मैं शुद्ध हूं, बिंदु हूं, निरंजन हूं, फिर कहेंगे 12 भावना रोजीना पढ़ो। बोलते कि नहीं बोलते अपने यहां, ये चीजें जो 12 भाव रोजीना पढ़ने की हैं वो आत्म कल्याण से सीधी हैं, और वो एक बाकी की चीजें वो सामान्य जानकारी की बात है, आप उससे बिल्कुल अछूते न रह जाए। जैसे कि आप यहां 5 साल पढ़ रहे हैं, तो ये तो कोर्स हमने बना दिया इसी हिसाब से सोच सोच करके, अब तुमको सब तुमने सारा ज्ञान चारों तरफ का थोड़ा थोड़ा कर लिया। अब तुम यदि समझ लो कि इसके तुमको टीचर बनना है ना, तो कहते भाई तुम न्याय शास्त्र के बन जाओ, तुम व्याकरण शास्त्र के बन जाओ, तुम इतिहास के बन जाओ, तुम करुणानियोग के विशेषज्ञ बन जाओ। देते ना एक उम्र सार पढ़ाएंगे हमेशा, ये समय सार पढ़ाएंगे, करते थे ना, ये पढ़ाएंगे, तो एक एक प्रोफेसर नक्की होता है ना, अब वो अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। जब दूसरा विषय आता है तो वो खुद ही कह देता है ना, ये बात अपन अन्ना जी से पूछ लेंगे, बोल देते कि नहीं बोल देते हैं, माने मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, अपने यहां जो इसका विशेषज्ञ है उनसे अपन बात करेंगे, होता ना, तो वो उसकी चीज है। लेकिन ये अध्यात्म आत्मा ये तो सबका है ना, मोक्ष तो सबको जाना है ना, ये अनिवार्य सब्जेक्ट है एक तरीके से। अब ऐसा हो गया कि कुछ लोग चरणानियोग को अनिवार्य सब्जेक्ट मान बैठे, वो आता है बानी जी के आत्मकथा में एक बात कहता है कि उनकी एक माता जी थी चरोजा बाई, वो उनकी असली माता नहीं थी, धर्म माता थी, जब वो धर्म के क्षेत्र में आए तो उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन्हें बेटा बनाया, उन्होंने माँ बनाया। वे बहुत धर्मात्मा थी, स्वाध्यायी थी, संपन्न थी, और इनके पास तो कुछ था नहीं, तो आर्थिक सहयोग भी किया इनके पढ़ने में बहुत। तो वो ऐसा लिखा कि उन्हें कोई बैठी थी पर वो गेहूं साफ कर रही थी, समझिए ना। तो उनसे क्यों अम्मा जी क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा मैं चरणान योग का स्वाध्याय कर रही हूं। क्या कहा? तो उनने भी बहुत प्रशंसा की बहन जी ने कि देखो वो कितनी महान थी, उनको इसमें भी चरणानी योग का स्वाध्याय दिखता था। अब बहुत चली, सब पंडित उदाहरण दे देके, जब हम लोग पढ़ते थे तुम्हारे जैसी पोजीशन में थे तब पंडित लोग आते थे और वो उदाहरण ले लेकर के सुनाते थे कि देखो कितना महान, कितनी महान। आज हमको हंसी आती है उसी बात पे करके कि चरणानी योग गेहूं साफ करने में हो गया। इस तरह से शाम तक खाने पीने में ही लगे रहना, सोच के और पानी छानने में ही सारा धर्म हो गया, बेलचन्नी कहाँ डालने उसमें हो गया, गेहूं बीन बीन के खाने में और बनाने में। और उन लोगों का, उस चरणान योग वालों का कम से कम दिन से आधे से ज्यादा हिस्सा, 10-12 घंटा तो उनके खाने पीने की व्यवस्था में, एक टाइम के खाने पीने की व्यवस्था में चले जाते हैं। पर हमारे कहते कन्नौजिया ब्राह्मण हो तो उसके घर में 10 आदमी होंगे ना तो 11 चूल्हे होंगे, कोई एक दूसरे का छुआ नहीं खाता है। 10 आदमी के 10 चौके और एक किसका, कोई मेहमान आएगा ना तो मेहमान आएगा तो वो खुद अपनी बना के खाएगा। मन इतना अधिक शोध उनके यहां होता है। तो वहां पर एक कहा जाता है कन्नौजिया ब्राह्मण, कन्नौजिया माने एक कन्नौज नाम का शहर है ना, जहां का जयचंद था, कन्नौज कैसा ना पृथ्वीराज जयचंद, तो कन्नौज के वहां इतना अधिक ब्राह्मणों में शोध है। तो अपने यहां भी कुछ कन्नौजिया लोग होते हैं कि वो दिन भर उसी में लगे रहते हैं। तो उनसे कह भैया इससे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ आत्मा का अध्ययन वध्ययन करो, अब कुछ जो प्रकृतियां जिमते रहते हैं सुबह से शाम तक, इस गुणस्थान में इतनी प्रकृतियां 12 महीना एक दफे पढ़ना तो ठीक है, समझे ना, सामान्य जानकारी ले लेना तो, लेकिन 24 घंटा और दिन रात उनकी खबर यहां ली है इन गाथाओं में। और कोई बस एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध है, और उसमें इसमें अति व्याप्ती दोष है, इसमें असंभव दोष है, और इसमें एक हेतु व्यपचारी है, अनेकांतिक हित्वाभास है, वो इसमें ही सारी जिंदगी लगा देते हैं। हम जब पढ़ते थे और हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे तो हमको बहुत विकल्प आता था, आपस में मजाक भी करते थे, इनकी जिंदगी बस तत्र बंदी में ही निकल गई। वो ऐसा होता है ना, उसका विशेषज्ञ है, मुझे हर साल उसे वही क्लास में पढ़ानी है, तो वो उसी के बारे में सोचेगा, लोग प्रश्न भी उसी के बारे में करेंगे, उसी के बारे में होता है ना। तो ये विशेषज्ञता तो एक विषय में ही होती है। तो ऐसी प्रवृत्ति कुंद और अमृतचंद के समय में भी रही होगी, तब उन्हें ये गाथाएं लिखनी पड़ी कि वो एक एक आदमी एक एक प्रवृत्ति से चेंट गया क्या, और वो सबसे ज्यादा धर्म उसी प्रवृत्ति में मानने लगा और दूसरों की आलोचना करने लगा, उसके दिमाग में बैलेंस नहीं रहा। देखो है ना, उसकी बात यहां पर है। देखो इस कथन से उनका खंडन हो गया जो कर्म बंध के विस्तार के ज्ञान से ही संतुष्ट हैं। करुणान योग के शास्त्रों में कर्म बंधन की प्रक्रिया के विस्तार से निरूपण है। उसका अध्ययन करने वाले जो लोग यह समझते हैं कि हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हम तो सब जानते हैं कि कौन सा कर्म कब बनता है कैसे बनता है। अब कर्म काटने के लिए वो कर्म कब बना कैसे बना ये जानने की जरूरत नहीं है। ये सब जानना बंद करके अकेले अपने आत्मा को जानो तो कर्म करते हैं, उन कर्म बंधन की जानने काटने की प्रक्रिया को कैसे करते हैं वो जानने से नहीं करते। देखो साइकिल चलाना सीखना है तो कितनी सी फिलॉसफी है, सीट पर बैठ जाओ, हाथों से हैंडल पकड़ लो, पैरों से पैडल चलाओ और जहां जाना हो वहां मोड़ते जाओ, बस इतनी सी बात है। अब और ज्यादा क्या कहें, पूरा समय सार नहीं लिखा जा सकता है ना गुमर सार। साइकिल चलाने की विधि तो इतनी ही है ना। अब क्या पैरों से पैडल चलाना, हाथ से हैंडल पकड़ना, सामने सड़क देखना, क्यों इतनी सी प्रक्रिया है ना। अब वो पैदल चढ़ाए तो पैदल देखे, बिना देखे चलाए कैसे क्यों सड़क को नहीं देखे, क्या देखे कि पैदलों को देखे कि चल रहे कि नहीं चल रहे, और हाथ से हैंडल पकड़ा तो हैंडल को देखे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कि भाई पैरों से पैदल चलाओ, उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, हाथों से हैंडल पकड़ो लेकिन उसे देखने की जरूरत नहीं है, देखो सामने की सड़क, समझे ना। लेकिन जब शुरू शुरू में नौसिखिया होता है ना तो वो गारंटी से पैरल पे पैर रखेगा और उसे देखेगा, हाथ को हैंडल से पकड़ेगा और उसे देखेगा। ऐसे ही कर्म बंधन काटने के लिए कर्म बंधन को देखने की जरूरत नहीं है, उसका ज्ञान होना जरूरी नहीं है, समझ गए ना। तुम आत्मा को देखो तो कर्म कटेंगे। देखो कर्म को देखने से कर्म नहीं कटेंगे, आत्मा को देखने से कर्म कटेंगे। तो वो कहते हैं कि कर्म बंधन की प्रक्रिया को जानकर उसे देखना हो गया ना और कर्म कट जाएंगे, ऐसा मानता है। कर्म बंधन के काटने की ये विधि नहीं है। बंबई में एक डॉक्टर है इंदिरा हिंदुजा, वो है कि जिनने विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था, विश्व में ट्यूब में बच्चा पैदा किया था, मां के पेट में नहीं, उसकी विशेषज्ञ मानी जाती है, बंबई में है। वो अपने प्रवचनों में आती है और जब उन्हें ज्यादा उनको बहुत प्रश्न खड़े हो जाते हैं, 10-20 डॉक्टर बैठ करके वो चर्चा करते हैं, तो वो हमारा निमंत्रण करते हैं, जब हम जाते हैं अपने घर पे खाने पे बुलाती हैं, हिंद और कौन सिंधी, क्या समझे रमेश भाई, सिंधी हैं हिंदुजा, और फिर वो सब डॉक्टर लोग मिलकर हमसे चर्चा करते हैं। तो एक दफे ऐसी बहुत बहुत बार 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 चर्चा इस बात पे आवे तो बहुत समझाया, माना ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा देखो आप तो इसकी विशेषज्ञ है ना कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है, जब वो एक महीने का होता है तो कैसा होता है, फिर दो महीने का होता है तो कैसा होता है, फिर तीन महीने का होता है तो कैसा होता है, सबके आपने चित्र बना के अपने कमरे में लगा रखे हैं, क्यों, और उनके वो बना बना करके डब्बों में रखे हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, और आपको ये भी ज्ञान है कि एक महीना में 30 दिन में पहले दिन कितना और दूसरे दिन कैसा, पूरी डिटेल आप अच्छी तरह से जानती हैं। उन लोगों ने शादी नहीं की है, इसी में जिंदगी लगा दी है, समझ गए ना। तो मैंने कहा कि ये सब आप जानती हैं, आप इतने बड़े ज्ञान से जो है ना डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं गायनोलॉजी क्या बोलते हैं, इससे एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। वो एक आदिवासी की लड़की है, काला अक्षर भैंस बराबर है, वो कुछ नहीं जानती है कैसे क्या होता है, एक महीना में कितना और दो महीना में कितना, ये कुछ नहीं जानती है। और वो गर्भवती हो जाती है और 9 महीने में एक सुंदर बच्चे को पैदा कर देती है, آپ کی کلاس میں آنے کی اسے ضرورت نہیں ہے, یہ سب باتیں جاننے کی اسے ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی کرم بندھن کاٹنے کے لیے, کرم بندھن کیسے بندھتے ہیں, ان کی پرکریا کیا ہے, یہ کرم بندھن کاٹنے کی ودھی نہیں ہے. ان کی طرف سے اپیوگ ہٹا کر آتما کو جانو تو کرم بندھن کرتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم آتما کو جانو اور اس کا دھیان کرو, یعنی اس میں اپیوگ کو استھر کرو. اب ہر ایک نے اپنا اپنا اپیوگ کیا, اس کا دروپیوگ کیا, وہ کہنے لگے کہ تم سادھو ہو جاؤ, وہ کہنے لگ جائے کہ تم دھیان میں بیٹھ جاؤ, کوئی کچھ کہنے لگ جا. لیکن یہاں تو وہ وشدھ بات سے, چونکہ بندھادھکار ہو چکا ہے اور بندھادھکار میں بند کا بہت وستار سے وہ ورنن کر چکے ہیں, لیکن اس میں ایک شبد بھی ایسا نہیں آیا کہ یہ بند چار پرکار کا ہوتا ہے, پرکتی پردیش استھول سے انوبھائے. آیا ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس ارتھ میں آیا ہوگا. جبکہ جو وہ شاستر ہے نا, ان میں ڈیٹیل ان کا ورنن ہے بہت وستار سے کرم فلسفی کا. تو وہ کہتے ہیں کرم بندھ کے گیان سے بندھ نہیں کٹتے, بس اس لیے بندھ کے گیان سے سنتشٹ ہونا ہو جانا وہ مارگ نہیں ہے. لیکن سامان کرم بندھ کی پرکریا کی جانکاری ہونا اچھی بات ہے, لیکن نہیں بھی ہوگی تو تس ماسم گھوسنتو جیسے منی راج بھی آتما کا دھیان کر کے کرم کاٹ کے موکش چلے جائیں گے. اب تس ماسم گھوسنتو والے منی ہیں نا, وہ آدیواسی کنیا ہے بنا پڑھی لکھی, جو سندر بچے کو پیدا کر دیتی ہے. تو سمجھے نا, یہ کرنا نیوگ کے وشیشج اور اندرا ہندوجا ڈاکٹر جو بھی ایک ایک ڈیٹیل جانتے رہیں گے زندگی بھر, لیکن ایک بچے کو پیدا زندگی میں نہیں کر سکتے. تو کہہ سکتی ہیں ہم نے تو سینکڑوں بچے پیدا کیے ہیں, روزانہ کم سے کم 10 ڈلیوری تو ہم کراتے ہی ہیں. کراتے ہو گے, کرتی تو نہیں ہو نا. پیدا بچے پیدا کرنا ڈلیوری کرانے کا نام نہیں ہے, سمجھے نا. دوسروں کے بچوں کو پیدا ہونے میں سہیوگ کرنا, نمت بننا, اس کا نام بچے پیدا کرنا نہیں ہے. کیوں, سیم کے بچے ہونا اس کا نام بچے پیدا کرنا ہے. اور سیم کے بچے پیدا کرنے کے لیے نہ ماں کو نہ باپ کو یہ تمہارے ڈاکٹری کا گیان ہونا بالکل ضروری نہیں.